جو بھائی اس وقت سب سے پرارتھنا کلاس چل رہا ہے میرے پیج پر دھیان ہے جان سے جان مٹی مٹی بچوں نے یہ گیت سنا اور سبھی سینٹرز پر یہ گیت ہے اتوا نہیں ہے تو پتا نہیں ایسے ایسے دو چار گیت ہیں وہ سب کے پاس ہونے چاہیے یا ٹیپ میں بھرنے پڑے اب یہ گیت تو بنایا ہوا کلی بھی منشیوں کا ہے پرنتو ڈراما پلان انوسار باپ دوارا ٹچ کیا ہوا ہے جو پھر بچوں کے کام آتا ہے ایسے ایسے گیت بچوں کو سننے پر نشہ چڑھتا ہے بچوں کو تو نشہ چڑھا ہی رہنا چاہیے کہ ابھی ہم نئی راجدھانی استھاپن کر رہے ہیں ہم اپنی راجدھانی راون سے لے رہے ہیں جیسے کوئی لڑتے ہیں تو خیال رہتا ہے کہ ان کی راجائی ہم حق کر لیں ان کا گاؤں ہم اپنے ہاتھ کر لیں اب وہ سب تو حد کے لیے لڑتے اور تم بچوں کی لڑائی تو ہے مایا سے جس کا سوائے تم براہمنوں کے ہو کوئی کو پتا نہیں ہے تم جانتے ہو ہم کو اس وشو پر گپت ریتی راجی استھاپن کرنا ہے ارتھات باپ سے برسا لینا ہے اس کو واستو میں تو لڑائی بھی نہیں کہیں گے راما انوسار تم جو ستو پردھان سے تھے ابھی تمو پردھان بنے ہو تو پھر ستو پردھان بننا ہے تم اپنے جنموں کو نہیں جانتے ابھی باپ نے سمجھایا ہے اور جو بھی دھرم استھاپک ہیں ان کو یہ نالج ملنے کی نہیں ہے باپ تم بچوں کو ہی بیٹھ کر کے سمجھاتے ہو جب ان دھرم پتاؤں کو ہی یہ نالج ملنے کی نہیں ہے تو ان کے فالوورز کو کیسے ملے گی بتایا بھی جاتا ہے دھرم ہی طاقت ہے ریلیجن از میچ کہا جاتا ہے بھارت واسیوں کو یہی پتا نہیں ہے کہ ہمارا دھرم کیا ہے تم کو باپ دوارا پتا پڑا کہ ہمارا آج سناتن دیوی دیوتا دھرم ہے باپ آ کر پھر تم کو اسی گھر میں لے جاتے تم جانتے ہو ہمارا دھرم سکھ بہت دینے والا ہے تم کو کوئی سے بھی لڑائی آج نہیں کرنی ہے تم کو تو اپنے ان سدھرم میں ٹکنا ہے اور باپ کو یاد کرنا ہے اس بات میں بھی سمے لگتا ہے ایسے نہیں کہ صرف کہنے سے استھت ہو جاتے ہیں سدھرم میں استھت ہونے کے لیے پرشارتھ کرنا پڑتا ہے تو اندر میں یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم آتما ہیں شانت سرو ابھی ہم آتما تمو پردھان پتت بنی ہو پوتر بن کر ہم کو پھر واپس گھر جانا ہے باپ سے برسا لینے کے لیے اپن کو آتما نشچے کر باپ کو یاد کرنا ہے تم کو نشا چڑھے گا کہ ہم تو ایشور کی سنتان ہے سب کو تو ایشور کی سنتان نہیں کہیں گے پریکٹیکل میں ایشور کی سنتان بنتے ہیں کیا اور تم تو پریکٹیکل میں ایشور کی سنتان بنتے ہو ऐसे बाप को याद करने से ही विकल्प विनाश होती है। इतना सहज है, याद से हम पवित्र बने फिर शांति धाम में चले जाते। दुनिया तो इन शांति धाम सुख धाम की बातों को भी नहीं जानती, बिल्कुल इडियट हो गए। ये है ही आसुरी संप्रदाय, ये बातें किसी शास्त्रों में भी नहीं है। ज्ञान सागर बाप की है ही एक गीता, और उस गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर है, उसे परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को भी ज्ञानवान कह नहीं सकते। जबकि वो ज्ञान देवे तब तुमको ज्ञानवान बनावे। अभी सबकी बुद्धि भक्ति वाली, तुम भी भक्ति वाले थे, अभी फिर ज्ञानवान नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बनते जा रहे हो। कोई में ज्ञान है कोई में नहीं है तो क्या कहेंगे? अगर भक्ति भी छूटी और ज्ञान भी नहीं है, अगर ज्ञान हो तो ज्ञान योग दूसरों को सिखावे, नहीं है तो क्या कहेंगे? उनको कहेंगे दोनों ही जहानों से गए, उस जहान में ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। बाप सर्विस के लिए कितना उछाल मारती रहती है, बच्चों में तो अभी भी वो ताकत नहीं आती है जो कि कोई को अच्छी रीति समझा ले। ऐसी ऐसी युक्तियां रहती है, पर बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु रिजल्ट कम निकलता है। गोपों में कुछ ताकत है, फीमेल्स में जो ताकत नहीं है तो समय निकाले। राय निकाल के देवे वो तो फिर भी पढ़े लिखे पोजीशन वाले होते हैं। जिसने प्रोग्राम बनाया है वो जोड़ा ही पढ़ा लिखा है तो डबल का फोर्स आ गया है। ऐसे ऐसे डबल फोर्स वाले युगल है, कोई भी अपने इस ब्राह्मण कुल में दूसरे नहीं है। ब्राह्मण मुक्त पर है परंतु उनमें भी ऐसा युगल एक ही है जो कि गोपों को उठाए रहा है। उनको ख्याल आ रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले कि सर्विस वृद्धि को कैसे पावे। माता मार रहे हैं, फीमेल्स में तो इतनी दम नहीं। नाम भी बन सकती सेना है परंतु पढ़ी लिखी हुई नहीं है। अगर थोड़ी भी पढ़ी लिखी है तो झटुन में देवराना आ जाता है। बाबा ने यह भी समझाया है कि केवल लाई बहुत नुकसान करती है, ये बीमारी बहुत फैलती जाती है, इसलिए उछलती नहीं है। इसलिए बाबा पूछते भी है कि युगल सब ठीक चल रहे हैं, सत्तर जोलाई संसद शक्ति वाणी का दूसरा दिन, उस तरफ तो देखो कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं, स्त्रियों के भी झुंड हैं, पढ़ी लिखी हुई भी है, उनको गवर्नमेंट से मदद भी बहुत मिलती है, और तुम तो गुप्त हो, कोई भी नहीं जानते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या करती है। फिर तुम्हारे में भी नंबर वार गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए रहती हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो कहलाते हो, सिर्फ कहने मात्र कहलाते हो, परंतु वो क्रिमिनल लाइफ ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे चलते रहे वो बहुत मुश्किल है, नहीं तो क्या होता है, एक पहिया चलता है दूसरा पहिया जाम होता है, गाड़ी जहां की तहां घूमती रहती है। अभी दिल्ली में संगठन करते हैं, बाबा भी समझाते रहते हैं, फिर सर्विस को उठाने के लिए बड़े बड़े म्यूजियम खोलो, म्यूजियम स्थायी होते हैं, प्रदर्शनी तो चलती फिरती होती है, कोई धनवान भी है तो चलते नहीं है म्यूजियम खोलने के लिए, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होता है तो भी गोद में ले लेते हैं, उछल नहीं आती है कि बाबा हम बैठे हैं, मैं बड़ा मकान लेकर के देता हूं। बाबा की नजर दिल्ली पर है, क्योंकि दिल्ली है भारत का कैपिटल। बड़ों बड़ों की बैठक को कैपिटल कहा जाता है। अगर कैपिटल को जीत लिया तो सारी राजधानी जीत लेगी। कोई चढ़ाई करते हैं तो भी कैपिटल के ऊपर करते हैं। तो दिल्ली है हेड ऑफिस, बाबा कहते हैं कि दिल्ली पर चढ़ाई करो, बहुत अच्छा सा म्यूजियम बनाओ, बाबा तो स्थान आदि देखने नहीं जावेंगे, तुम बच्चे ही इधर उधर आते जाते रहते हो, कोई अच्छे को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया हुआ भी है कि पांडवों को कौरवों से तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, ये कौरव अक्षर भी तो गीता का है ना, भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, जो राजयोग सिखाया उस ज्ञान का नाम है गीता, परंतु गीता के भगवान का नाम झूठा रख दिया। इसलिए बाबा बार बार कहते रहते हैं, मुख्य इसी पॉइंट को उठाने, आगे बाबा कहते थे कि बनारस की विद्वत मंडली में घुसो, लेकिन वहां भी जीत पा नहीं सके। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते रहते हैं, अच्छी रीति कोशिश करनी है, पहले पहले तो कैपिटल में अच्छा फर्स्ट क्लास सेंटर हो, जयपुर में मकान मिल गया तो उसको सजा लिया है, परंतु जयपुर तो किनारा है ना, कहेंगे राजस्थान का कैपिटल है, परंतु होना चाहिए दिल्ली में। भले दिल्ली के ब्राह्मणकुल भूषणों में इतने धनवान नहीं है, परंतु और तरफ तो धनवान है ना। बाप बार बार समझाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे भी बाबा के हाथ में है। नंबर वन दिल्ली में ही युक्ति रचो, इस बात की म्यूजियम बनाने के लिए कौन सा म्यूजियम, अच्छा बुद्धि होंगे तो जड़ चित्रों का म्यूजियम बना देंगे। बालिग बुद्धि होंगे, सगीर होंगे तो चैतन्य म्यूजियम बना लेंगे। संगठन में भी मूल बात यही हो कि बड़ा सेंटर दिल्ली में कैसे खुले, वो लोग तो दिल्ली में बहुत भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, लड़ना आदि कुछ भी नहीं करते हो, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। तो दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है, कोई और प्लाट ले लो। तुम जो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक हैं, तो फिर कल पहले की तरह सच के भी मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है कि जरूर विश्व का मालिक बनना है। अभी तुमको तीन पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में चाहिए, जो कि वहां पर ज्ञान के बड़े बड़े गोले और तोपे छोड़ो। इतना नशा चाहिए, परंतु ऐसी तो कोशिश ही नहीं करते। नशा आता ही नहीं है, माया ऐसी है जो एक दुम में ही प्यार में नहीं होते हैं। लूट पानी बन करके रहते हैं। कई अच्छे पढ़े लिखे हैं और हैं भी धनवान, तो फिर उनमें दम नहीं है, झुके हुए हैं। धन के मोह में, बच्चों के मोह में झुके हुए हैं। थोड़े थोड़े पुरुष हैं सो भी नौकरी आदि में फंसे रहते हैं। बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय सारा भारत गरीब है, सारा भारत गरीब है। भारत में टाटा डालमिया नहीं आते क्या? मैंने इशारा दिया कि जो विदेशियों को फॉलो करने वाले हैं, विदेशी सभ्यता को तरजीह देते हैं, विदेशी धारणाओं को तरजीह देते हैं, वो धनवान है। और जो गरीब हैं, उनके लिए गरीब निवाज बाप आया हुआ है। तो भारतवासी सारे ही गरीब हैं। गरीबों के सेवा करने के लिए बाप आते हैं। डेयरी में तो भले लाख डेढ़ का खर्चा होना चाहिए, बहुत अच्छा सेंटर होना चाहिए, बच्चे बहुत ही गुप्त हैं, जो कहते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूं, फिर बाबा भी लेकर के क्या करेंगे, इशारा देते रहते हैं। डेयरी वाले समझते ही हैं कि बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, आपस में खीर खंड होकर के मिल करके अच्छे अच्छे वकीलों आदि को हाथ करो, वो जमीन नहीं तो दूसरी जमीन हाथ करो। अपने पांडवों का किला तो बना देंगे ना, दिल्ली में ही बनाना होगा। परंतु बच्चे इतना दूर अंदेश बुद्धि नहीं रखते हैं, इसमें तो दिमाग बहुत अच्छा चाहिए। उस बात में पांडवों का किला ऐसा बनाने में दूरंदेशी दिमाग चाहिए कि ऐसा पांडवों का किला बनावे जिसमें एक भी भिखारी आसुरी प्रवेश न कर सके। तो बच्चे इतनी दूरंदेशी बुद्धि नहीं रखते हैं, बहुत हैं जो कुछ कर भी सकते हैं परंतु दिमाग ही ठंडा है। वो लोग तो कहते हैं भारत हमारा देश है, हम ऐसे ऐसे करेंगे, परंतु खुद में दम भी नहीं, बिना मदद के उठ नहीं सकते। तुमको तो बाप से बहुत मदद मिल रही है, इतनी मदद जितनी बाप देते हैं और कोई को मिल नहीं सकती। मेल ठीक है व नहीं है, जहां मेल नहीं होता है तो वहां हार हो जाती है। 17 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा पेज, तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला कितना बुलंद चाहिए। निंदा करने में, चुगली करने में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है, और बंधनों की आफत है माताओं के ऊपर, मेल्स के ऊपर तो कोई बंधन नहीं होता है। कलयुग में माताओं को ही अबला कहा जाता है, पुरुष तो बलवान होते हैं, धन से भी बलवान होते हैं और तन से भी बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो स्त्री तो जैसे कि पूंछ बन जाती है, पिछाड़ी में लटकने वाली। तो सचमुच पूंछ बनकर ही लटक मरती है, पति में मोह, बच्चों में मोह, जैसे हूबहू बंदरों में होता है ना, पुरुषों का तो इतना मोह नहीं रहता है, उनकी तो एक जूती गई तो फिर दूसरी तीसरी ले लेते हैं, जैसे कि आदत पड़ गई है, अभी तो देखो शंकराचार्य जैसे भी कहते हैं कि बहुत शादियां करके बहुत बच्चे पैदा करने चाहिए। अभी क्यों कहते हैं, पहले क्यों नहीं कहते थे? पहले ये सन्यासी भी सतो प्रधान थे तो जंगलों में रहते थे, पवित्र रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं तो शहरों में घुस पड़े हैं, खुद को पवित्र नहीं रख सकते हैं, तो बात ही बदल दी। भाषण देते हैं कि भारतवासियों को भी अनेक शादियां करनी चाहिए तो अनेक बच्चे पैदा होंगे, मुसलमानों की जनरेशन बहुत बढ़ गई है, क्रिश्चियंस की दुनिया में जनरेशन बहुत बढ़ गई है, अभी भारतवासियों की जनरेशन बढ़ानी चाहिए। क्या क्या भक्ति रहते आवास तो कोई करते ही नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी ताकत नहीं है जो कि उनको लिखे कि तुम सन्यासी होकर के ये क्या कह रहे हो, दूसरों को भाषण देते हो पहले तो तुम शादियां करो तब दूसरों को शिक्षा दो। सब जैसे कि सोए हुए हैं, ताकत ही नहीं है। कोई कोई अखबार वाले मानते भी है तो फिर उनके पास जाते नहीं है। बाबा तो समझाते रहते हैं कि ये अखबार में डालो, पहली मुख्य बात गीता ये खंडन की हुई है, इस कारण भारत गरीब बना है। फिर बाप आकर के सच्ची गीता सुना करके राजयोग सिखाए रहे हैं, गीता में कृष्ण का साकार का नाम डालने से, अपवाइयों कहे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डालने से सच्चे गीता ज्ञान का महत्व ही नहीं रहा। बाबा कहते तो बहुत है परंतु उत्तर नहीं आता है कि बाबा हम ये युक्ति रच रहे हैं, बाबा के दिल पसंद कोई समाचार ही नहीं आता है। बाबा तो कोई से बात नहीं करेंगे क्योंकि बाबा में तो शिव की पदरमणी है ना, कोई उल्टा सुल्टा बोल करके किसे गार्ड कर देवेगा। तो और ही तीसरे गार्ड होने से पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि बोलो तो अपने ही नशे में रहते हैं, उनको क्या पता कि ये कौन है। इनकी बाहर में शर्म से नहीं हो सकती है, इनकी जिस तन में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा बाहर की दुनिया वालों की सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहीं पर जाना ही बंद कर दिया है। बाहर की दुनिया में आना जाना बंद, तो बच्चों को ही बाप का शो करना है। ईमान कब की है? 57 की है। व्यक्तवाणी में भी अभी 4-6 साल पहले बोला था कि दुनिया वालों की नजरों से बाप दादा ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। माना शूटिंग के हिसाब से हूबहू रिपीटेशन होता है। तो बोला बच्चों को बाप का शो करना है, दुनिया वालों को समझाना करना तुम्हारा काम है, क्योंकि बाप के साथ ये पूंछ भी तो लटकी हुई है ना, तो ये भी जा नहीं सकती है। कहेंगे शिव बाबा हमें ये बात बताओ, ये हमारे पर आफत है, इस बात में हमको राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते रहते। अरे बाबा तो आए ही है पतितों को पावन बनाने, बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब प्रकार की नॉलेज मिलती है, कोशिश करके आपस में मिल करके बड़ा सेंटर खोलो। चींटी मार की सर्विस तो चली रही है, अभी बेहंग मार्ग का तमाशा करके दिखाओ। तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा ने कल पहले भी समझाया था, सो अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहां ना कहां पर फंसी पड़ी है। ये देहदारी का लगाव उमंग उत्साह ठंडा कर देता है, सेवा हो नहीं पाती। बहुत बच्चों का आपस में रूहानी प्यार कम है, जिसमें ही प्यार बढ़ता जाता है, जब देवान में आ जाते हैं। ये देवान तो बहुत खोटा है, इस देवान ने ही सारी सत्यानाश की है। अभी बाप सत्या ऊंची करने के लिए कितना सहज रास्ता बताती है। बाप को याद करो तो शक्ति आएगी, नहीं तो शक्ति आती ही नहीं है। बल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं चढ़ते, तो देवान बहुत है। देही अभिमानी बने तो नशा भी चढ़े कि हम किस बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं जितना जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना बाप का बल तुम्हारे अंदर भरता जाएगा। आधा कल्प का दे अभिमान का नशा है, ऐसे नहीं कि बाबा ही ज्ञान का सागर है, हमने भी तो ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते भी हैं, परंतु फिर याद का जौहर भी चाहिए ना। ये ज्ञान की तलवार है और याद की यात्रा है, दोनों ही अलग अलग चीजें। तो ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। वो नहीं है तो जैसे कि काठ की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वो सिख लोग तो हिंसक थे। स्थूल तलवार से स्थूल हिंसा करने वाले थे, तुम्हारी तो ज्ञान की तलवार है। उन्होंने हिंसक तलवार से लड़ाई की, तुम ज्ञान की तलवार से लड़ाई लड़ते हो। वास्तव में उन सिखों को तो गुरु कह नहीं सकते, कोई भी गुरु लोग लड़ाई थोड़ी करते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए, लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तो देखो दुनिया में क्या क्या होता रहता है, विलायत से भी तलवार मंगवा करके परिक्रमा देते हैं, जलसा मनाते हैं, और तुम्हारी भी योग की बात है। विलायत से तलवार मंगाने का मिसाल क्यों दिया?
बाहर से वेपन
मंगाते
हैं,
गवर्नमेंट
वाले बाहर अमेरिका रशिया से
वेपन
मंगाते
हैं। क्या बताते? वो तो स्थूल वेपन्स की बात हुई, हमारी तो बेहद की बात है ना। विजयमाला की मुखिया कहाँ से आ रही है? विदेश से आवेगी। तो इशारा दिया कि भक्ति मार्ग में तो स्थूल रूप में मनाते हैं, वो यादगार है कहां की? यहां की यादगार है। तो ज्ञान की तलवार विदेश से मंगाते हैं, फिर परिक्रमा दिखा दिलवाते हैं पूरे देश में, जल से आदि मनाते रहते हैं, परंतु याद के बल के बिना तलवार काम में नहीं आवेगी। क्रिमिनल आई सुधरेगी नहीं तो तलवार काम में नहीं आवेगी। ये बहुत नुकसान करने वाली चीज है। मूल बात है याद की। लिखते हैं कि बाबा हम तो बहुत मेहनत करते हैं, बाबा फिर कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ करो तो तुम्हारी तलवार में भी जौहर भरे। अंदर में धारणा करनी है कि हम आत्मा है, आत्मा कानों से सुनती है। 1767 की वाणी का चौथा भी बाप कहते हैं कि तुम याद में मस्त रहो तो तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। दे अभिमान में रहते हो तो चाहे विलायत से तलवार मंगाओ या कोई भी तलवार मंगाओ, सर्विस बढ़ेगी नहीं, ठहर जाएगी। कब कब कहते हैं बाबा कोई सुनता नहीं है, बाबा कहते हैं तुम याद की यात्रा में कच्चे हो इसलिए तुम्हारी कोई बात सुनता ही नहीं है, तुम्हारी ज्ञान की तलवार भी काम नहीं करती है। तो अभी याद की मेहनत करो, ये गुप्त मेहनत है। मुरली चलाना है ये तो प्रत्यक्ष है, परंतु याद की यात्रा गुप्त है। इस याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। बल ज्ञान को बल कहा जाता है, परंतु ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान सुनकर के खुशी आती है, धारण करने से खुशी और बढ़ती है, परंतु ताकत किससे आवेगी? याद किया कर तुम पति से पावन याद के बल से बनते हो। ज्ञान के बल से कोई पति से पावन नहीं बनता है। तो कमाई का पुरुषार्थ करना है। बच्चे कहते हैं बाबा कब कब तो बहुत खुशी रहती है, कब पता नहीं क्या हो जाता है। बाप कहते हैं याद में न रहने के कारण तुम्हारी एक तरह अवस्था नहीं रहती। ऐसे है कब कब अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिक, और कब कब अवस्था बहुत बिगड़ जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी अवस्था नहीं बनती। कारण क्या है? तो ये सज्जनों की रील घूमती है। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। उन 63 जन्मों में जिन्होंने जब जैसा अच्छा अच्छा कार्य किया है तो अच्छी अवस्था रहती, और जब खराब काम किया है तो अवस्था भी खराब हो जाती। ये शूटिंग की रील घूमती रहती है। परंतु बाप कहते हैं तुम याद की यात्रा में अटक रहो तो क्या होगा? अच्छी अवस्था बन ही जाएगी। बच्चों को किस्म किस्म के गुटके आते हैं, स्टूडेंट्स को टीचर याद नहीं पड़ता होगा। यहां तो घर में रहते सब कुछ करते हुए भी टीचर को याद करना है। इस सुप्रीम टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहने हैं व्यस्त विवाह में रहते टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर पड़े आवेंगे। इतने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में भी धन दौलत बाल बच्चे आदि को देख करके सब भूल जाते। बाप समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद की ही है ऊंची ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद बनी रहे। वाचा में बाप की याद कैसी बनी रहेगी? क्या तरीका है? वाचा से बाप के गुणगान करते रहो, बाप का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाते रहो, और कर्मणा कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करो वो बाप के प्रति अर्पण होने वाला हो तो बाप की ही याद आवेगी। सदैव मुख से ज्ञान की बातें करो, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य भी नहीं करना है। पहली बार अलफ न समझने से कुछ भी नहीं समझेंगे। तो पहले पहले अलफ पक्का करवाना चाहिए। जब तक अलफ पक्का नहीं होगा तब तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो पहले अगर पक्का पकड़ाओ फिर आगे बढ़ो। कौन से चित्र पर? त्रिमूर्ति के चित्र पर अलफ को पक्का कराना पड़े। कौन है अलफ और कौन है बे? ऊपर जो बिंदु रखा हुआ है शिवलिंग के रूप में, वो तो बिंदु है, अलफ नहीं है। उर्दू में अलफ खड़े डंडे को कहा जाता है और बे, बे सतयुग के बादशाह को कहा गया। तो पहले पहले अलग पक्का कराना चाहिए। सबसे वंडरफुल बात है गीता की, वो गीता की बात को सिद्ध करना। शिव बाबा राजयोग सिखा करके विश्वकर्मारी को बनाते हैं। ये राजयोग कष्ट बच्चा नहीं सिखा सकता। कृष्ण की गीता झूठी गीता है। वो झूठी गीता सुनने के कारण कंगाल बन गए। इस छीछी दुनिया में माया का पाम पेंड सो बहुत है। कृष्ण को माया के पाम पेंड सो से क्यों जोड़ दिया? क्योंकि क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। सूर्य के चित्र में दिखाया है भारत के 84 जन्मों की कहानी। भारत का उत्थान, भारत का पतन, उसे कृष्ण की कहानी नहीं कहेंगे। कृष्ण ना उतने उत्थान को पाता है और आखिरी जन्म में ना उतना पतन को पाता है। सीढ़ी के चित्र में भी लास्ट में कृष्ण अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में खड़ा हुआ है और राम की आत्मा पड़ी हुई। तो बताया ये छीछी दुनिया है जिसमें माया का पंप एंड शो बहुत रहता है। दो नाम है माया और राम, दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में। कहीं बोला गया शास्त्रों में या कहीं भी कृष्ण और माया नहीं। अभी तो देखो कितना फैशन हो गया है। फैशन कौन से धर्म से जास्ती निकला? क्रिश्चियन धर्म से। इसी दुनिया से तो नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का आकर चट कर देती है। कोई कमांडर होते हैं गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस कर दिया जाता है। खुद कमांडर को भी लज्जा आ जाती है। फिर कोई तो खुद ही रिजाइन कर लेते हैं। यहां पर भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स का फां हो जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था। अच्छा कौन सा कोई मुरली के बचे हुए पॉइंट्स हैं? धर्मों में मुख्य पहले पहले है देवी देवता धर्म, फिर वृद्धि तो सभी धर्मों की होती है, जाड़ बनता है, अनेक अनेक धर्म अनेक अनेक मत हो जाते हैं, सब धर्मों के बीच में यही आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो श्रीमत से स्थापन होता है। और सब धर्म मनुष्य गुरुओं की भ्रष्ट मत से स्थापन होते हैं, और देवी देवता सनातन धर्म सब धर्म है जो सतयुग में फैलता फूलता है, उसकी स्थापना श्रीमत से होती है। इसमें द्वैत की बात नहीं है, ये अद्वैत मत है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक बाप की। अद्वैत से बनते हैं देवता और द्वैत से बनते हैं दैत्य। ये रूहानी नाली रूहानी बाप ही बैठ समझाती है, तुम तो प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हो, तुम जानते हो कि बाप हमको ही पढ़ाते हैं, इनको जो अद्वैत मत लेकर के एक ही मत लेकर के एक से पढ़ाई पढ़ते हैं, वो है अद्वैत देवता बनने वाले आत्मा, ऊंचते ऊंच पद इस अद्वैत मत से ही मिलता है। हमको तो बहुत इनकम होती है, यही शुद्ध अहंकार रखना है कि हमको तो बहुत भगवान पढ़ाते हैं इसलिए हमको इतनी इनकम होती है, इतनी इनकम होती है। और धर्मों को तो आधा सुख और आधा दुख है, और हमको तीन हिस्सा तीन चौथाई सुख और एक चौथाई दुख मिलता है, तो हमारी जैसी इनकम तो और कोई को हो ही नहीं सकता। और बाकी क्या चाहिए, जबकि हम विश्व का मालिक बनते हैं तो फिर सोच आ जाता है कि हमको इतनी खुशी क्यों नहीं रहती है? हम इतनी प्राप्ति करते हैं, ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, फिर हमारी खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? हम ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्या कारण है? अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय क्यों होता है? क्योंकि एक की मत पर पक्के होकर के नहीं चलते, अद्वैत मत पर नहीं डटे रहते हैं, कोई न कोई दूसरे का आधार ले लेते हैं। तो तुमको यही शुद्ध अहंकार रखना है कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, संशय में आने से हार होगी और निश्चय में रहने से विजय होगी। किस बात पर निश्चय और किस बात पर संशय? अपनी आत्मा पर निश्चय कि मैं आत्मा 84 जन्म लेने वाली बाप का पक्का देवता बच्चा हूँ, डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ने वाला हूँ और अंत तक मैं एक बाप से पढ़ाई पढ़ने वाला हूँ। अपनी आत्मा पर निश्चय, दूसरा 84 जन्म लेने वाली जो पक्की आत्मा ऑलराउंड पार्ट धारी है उनका बाप कौन, टीचर कौन, सदगति करने वाला सदगुरु कौन जो एक ही जन्म में सदगति कर देता है, और तीसरा निश्चय ड्रामा के ऊपर जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है और आगे भी जो होगा कल्याणकारी होगा। हमारे लिए सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। तो बाप में तो संशय कभी नहीं लाना चाहिए, माया संशय में ला करके भुलाई देती है इसको, बच्चों को बाप की याद भुलाई देती है, बाप के ऊपर संशय लाई देती है। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी कि इसको खावे, आंखों से देखते हैं तो कोई के ऊपर क्रोध भी आता है मारने के लिए, आंखें देखेंगी ही नहीं तो मारेंगी कैसे, आंखें उसे ही देखती है तभी लोभ मोह आता है। तो मुख्य धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इन आंखों पर पूरी नजर रखनी है। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है तो फिर ये क्रिमिनल पना छूट जाना चाहिए, ऐसे भी नहीं है कि सूरदास की तरह आंखों को निकाल ही देना है क्या, पर इंद्रियां धोखा देती है, कोई भी इंद्रियां धोखा देती है तो इन इंद्रियों को निकाल देना है या निस्तेज कर देना है, जैसे बोलो साधु लोग करते हैं, नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों से काम तो लेना है लेकिन श्रीमति के अनुकूल काम लेना है। कोई कोई ऐसे भी मस्त हो जाते हैं, आंखें ही निकाल देते, तुम्हारी एक बात में विजय हो गई तो फिर बेहंग मार की सर्विस हो जाएगी, कौन सी बात में गीता का भगवान कौन, आंखें साधारण तन में आए हुए भगवान बाप को नहीं पहचान पाती, बार बार संशय निश्चय निश्चय और निश्चय में लाती है और गोरा चिट्ठा तन याद आ जाता है, उसके लिए बुद्धि में पक्का हो जाता है कि ये गीता का साकार भगवान है। तो क्या कहेंगे आंखों के लिए, आंखें किस बात की याद ही हो गई, फाउंटेन शो की आदि हुई पड़ी है। अखबारों में भी तुम डाल सकते हो कि गीता खंडन होने के कारण ही भारत की इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन तुम नई दुनिया में जा रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ओम शांति।